समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्म दिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मनोज, एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज। आई एम रेशमा तिवारी एंड विथ मी टुडे, एज यू ऑलरेडी नो, इज माय को-होस्ट मनोज, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Cricket fever grips the country as much-awaited final of ICC Champions Trophy match between India and New Zealand is underway in Dubai.
केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
India condemns vandalism at Hindu temple in California, calls for stringent action against culprits.
सीरिया में सुरक्षा बलों और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच झड़पों में मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हुई।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 टू कमेंस एट गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर दिस इवनिंग। And listeners, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about cricket, the ICC Champions Trophy, and history and fun facts about this thrilling sport. There's a lot that divides us, but I feel one thing that brings us all together is cricket.
सच है, बिल्कुल सच है। क्रिकेट को भारत का सबसे बड़ा धर्म कहना बिल्कुल सही है और इसने वर्षों से हमारे दिलों दिमाग पर कब्जा कर रखा है।
This is not surprising for me that cricket is the second most popular sport worldwide. With a fan base of approximately 2.5 billion people, cricket ranks as the second most popular sport globally. Its popularity spans countries like India, England, Australia and Pakistan, with formats like T20 and World Cups adding to its massive appeal.
लेकिन रेशमा, क्रिकेट कहाँ से आया? हम इसके प्रति इतने जुनूनी कैसे हो गए?
I'll tell you that. हाँ. But first, let me tell you who is the father of cricket. William Gilbert, W.G. Grace, a 19th century cricketer, is called the father of cricket. He was known for his exceptional skills and performance. W.G. Grace not only popularized cricket globally, but also established new standards.
जी जी, श्रोताओं, आप जानते ही होंगे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट विश्व कप के संस्थापक देशों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उनके प्रयासों और पहल को दुनिया भर में प्रोत्साहित किया जाता है।
Yes, and coming back to origins of cricket, historians believe that the modern game of cricket originated during the Saxon or Norman times in England around 1000 AD. It was a game invented by children in a region called Weald. However, the first written reference to cricket dates back to 1611.
रेशमा, ऐसा माना जाता है कि मूल खेल एक छोटी लकड़ी की गेंद या पत्थर और एक छड़ी का उपयोग करके खेला जाता था, जो आम तौर पर हॉकी स्टिक की तरह होती थी। कुछ छोटी छड़ें जमीन में गाड़ दी जाती थीं और बल्लेबाज को उन्हें गेंद से बचाने के लिए उनकी ओर लुढ़कने वाली गेंद से बचाना होता था। इसलिए वे गेंद को घुमाने के लिए हॉकी स्टिक से गेंद को मारते थे.
राइट, एंड इट वॉज मेनली अ चिल्ड्रंस गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर एडल्ट्स टुक ओवर अराउंड द स्टार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी. क्रिकेट बिकेम इंग्लैंड्स फेवरेट स्पोर्ट ओनली इन द 18th सेंचुरी विथ टूर्नामेंट्स वेयर टीम्स फ्रॉम डिफरेंट इंग्लिश काउंटीज एंड रीजन्स पार्टिसिपेटेड. By this time, the hockey stick-like bat was replaced by a straight bat, allowing bowlers to pitch the ball instead of rolling it on the ground.
जी जी, जैसे जैसे अंग्रेजों ने यात्रा करना शुरू किया और दूसरे देशों में उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया, वैसे वैसे उनके प्रिय सज्जनों का खेल भी शुरू हुआ. इसे सबसे पहले 17वीं सदी में उत्तरी अमेरिका और उसके बाद वेस्टइंडीज में पेश किया गया था. ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने इसे 1788 में जाना, जबकि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने इसे 19वीं सदी की शुरुआत में पहचाना.
सो जस्ट एज इट डिड विद इट्स अदर कॉलोनीज, इंग्लैंड ब्रॉट क्रिकेट टू इंडिया वाया द ईस्ट इंडिया कंपनी व्हेन इट लैंडेड इन सूरत इन 1721. एज ट्रेडर्स दे स्पेंट सम टाइम एस्टैब्लिशिंग देयर कॉन्टैक्ट्स विद लोकल इंडियंस. In their free time, they played cricket and thus introduced it to the locals as well.
अंग्रेजों ने 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब का गठन किया, जो 1787 में लंदन में बने मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब बन गया. इस क्लब ने ओल्ड एटोनियन नामक एक अन्य अंग्रेजी क्लब के खिलाफ एक मैच भी आयोजित किया था और इस मैच ने भारत में पहली शताब्दी बनाई थी. भारत में इस खेल को अपनाने वाले पहले भारतीय ब्रिटिश सेना के सैनिक या सिपाही थे जो अपने ब्रिटिश वरिष्ठों के साथ मैच खेलते थे. जबकि क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय नागरिक मुंबई के पारसी समुदाय से थे, जिन्होंने 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब नामक पहला भारतीय क्लब स्थापित किया था. हालांकि ये क्लब बहुत जल्दी बंद हो गया, लेकिन ये खेल पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैलने लगा.
Yes, and then in the late 1800s, gymkhanas for playing cricket were popping up in cities like Mumbai and Kolkata. A few Indians were included in the England cricket team, Ranjit Singh Ji and K.S. Dilip Singh Ji. At the start of the 1900s, England began sending local cricket teams to tour India, although they would play against Englishmen more than Indians.
1911 में पहली अखिल भारतीय क्रिकेट टीम का गठन और वित्त पोषण पटियाला के महाराजा द्वारा किया गया था, जो इसके कप्तान और विशेषज्ञ क्रिकेटर भी थे. 1924-25 में इंग्लैंड ने आर्थर ग्लीगन की कप्तानी वाली एक टीम भेजने का फैसला किया. वे भारतीय टीम के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल करवाने के लिए अभियान शुरू कर दिया, जो आमतौर पर केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित था.
Yes, Team India played its first Test cricket match at Lord's in England in 1932 after years of fighting for inclusion. While they may have lost that match, Team India caught up to the British over the next few years by defeating them in 1952 in a tournament held in Chennai. A year later, Team India signed up for its first international series against its favorite opponent, Pakistan. So, the history of cricket in India is not just about how Indians found a passion that they all loved, but it is also a story about grit, skill and perseverance in the face of adversity.
क्या आप जानते हैं कि कई देशों ने क्रिकेट को न केवल व्यक्तिगत जुनून के रूप में बल्कि एक कूटनीतिक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया है, तथा भारत जैसे देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया है जहां इस खेल का अत्यधिक महत्व है.
Cricket acts as a bridge for building friendly relations between nations. It is also used for soft power projection, since cricket is used to project cultural influence and create goodwill globally. Cricket events bring economic opportunities and set the stage for trade discussions. Cricket humanizes leadership and connects leaders with citizens and international audiences.
श्रोताओं, खेल सीमाओं और भाषाओं से परे होते हैं और राष्ट्रों के बीच सेतु का काम करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी न केवल भारत की संगठनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करती है, बल्कि वैश्विक समुदाय पर एक स्थायी प्रभाव भी छोड़ती है. क्रिकेट विश्व कप और इंडियन प्रीमियर लीग जैसे आयोजनों की सफलता ने भारत की छवि को एक खेल महाशक्ति के रूप में मजबूत किया है।
नाउ टॉकिंग अबाउट टुडेज मैच, मच अवेटेड क्लैश, डू यू नो द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। Since its inception, it has provided cricket fans with some of the most memorable moments in the sport's history. While the tournament has evolved over time, it continues to be a platform where the world's top teams compete for supremacy.
जी, आइए चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कुछ रोचक और कम ज्ञात तथ्यों पर नजर डालें। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में आईसीसी नॉकआउट कप के नाम से हुई थी। पहले दो संस्करण इसी नाम से खेले गए थे। 2002 में इसका नाम बदलकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया और ये क्रिकेट के शीर्ष टूर्नामेंटों में से एक बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से लेकर अब तक 13 टीमें इसमें खेल चुकी हैं, जिनमें केनिया और यूएसए जैसी कम चर्चित टीमें भी शामिल हैं। 2025 के संस्करण में पहली बार टूर्नामेंट में एक नई टीम अफगानिस्तान का स्वागत किया गया।
Both India and Australia have won the Champions Trophy twice. However, India's second win in 2002 was shared with Sri Lanka due to rain disrupting the final. Australia is the only team to defend its Champions Trophy title successfully. They won the tournament in 2006 and repeated their victory in 2009.
पिछले संस्करणों में मजबूत होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने 2009 के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीता है। उन्होंने 6 मैच खेले हैं जिनमें से 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा जबकि अन्य 3 बारिश के कारण रद्द हो गए। 1998 में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी दक्षिण अफ्रीका ने जीती थी। ये उनकी सीनियर पुरुष टीम द्वारा जीती गई एकमात्र आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है।
एंड यू नो मनोज, राइट नाउ सिंस द मैच इज ऑलरेडी ऑन, द लिसनर्स वुड बी इंटरेस्टेड इन knowing the status of the match right now rather than going back to the history for now. So I think we can wrap this up and move on.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Most of us find it difficult to memorize numbers or even names in our daily lives. Come, let's meet Vishwa Rajkumar, a young prodigy from Puducherry who achieved the remarkable feat of winning the Memory League World Championship by memorizing a sequence of 80 random digits in just 13.5 seconds.
The Memory League World Tour is a tournament series culminating in the crowning of the Memory League World Champion. Competitors receive World Tour points for competing in league sessions and slam tournaments throughout the year. At the end of the year, the competitors with the most World Tour points will be invited to compete in the Memory League World Championship. Conducted between 5th January and 2nd February 2025, 16 competitors from the top of the Memory League World Rankings competed remotely in a double elimination tournament to determine the 2025 Memory League World Champion. Vishwa Rajkumar achieved this rare feat by not just memorizing numbers but also names, cards, images and words. He was facilitated last day by the Lieutenant Governor and Chief Minister of Puducherry for this outstanding accomplishment. But what's the secret behind this exceptional memory? Vishwa Rajkumar's success goes beyond just practice. He has mastered the ancient memory palace technique, which involves associating information with specific locations like rooms in a house. By mentally placing pieces of information in these imagined spaces, Vishwa is able to recall them with ease. It's not just about memorizing numbers or words, but creating vivid stories in his mind that make everything easier to remember. Talking to Akashvani, Vishwa also credits his sharp memory to taking care of his physical well-being, with the hydration playing a key role in keeping his mind focused. Though his victory was a deeply emotional moment, Vishwa's journey is far from over. His next goal is to become a memory trainer and open an institute in India to teach others these powerful techniques. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashvani News, Puducherry.
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में मेलों का बहुत महत्व है। इस इलाके में मेले को मड़ई कहा जाता है। आमतौर पर बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में दिसंबर से मार्च महीने के बीच अलग अलग मेलों का आयोजन किया जाता है। प्रस्तुत है हमारे रायपुर संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बस्तर के मेले या मड़ई सिर्फ आकर्षक और मनमोहक ही नहीं होते बल्कि ये इस इलाके की समृद्ध जनजातीय परंपरा और संस्कृति को भी दर्शाते हैं। इनमें से कई मेले तो बीते कई सौ सालों से लगते आ रहे हैं। नारायणपुर जिले के ओरछा क्षेत्र में फरवरी महीने में लगने वाला माता मावली मेला बहुत प्रसिद्ध है। इस मेले के दौरान आसपास के गांवों से स्थानीय देवी देवताओं के प्रतीक स्वरूप लाई गई डंगई लाठ डोली और छत्र के साथ भव्य जुलूस निकाला जाता है। विभिन्न गांवों से श्रद्धालु लकड़ी की पालकियों में देवी देवताओं को लेकर आते हैं। इसी तरह बस्तर संभाग के कोंडागांव में भी मार्च महीने में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। छह दिवसीय मेला आज संपन्न हो रहा है। इस मौके पर आसपास के गांवों के देवी देवताओं का समागम हुआ। मेले के दौरान शोभा यात्रा भी निकाली जाती है जिसमें श्रद्धालु पारंपरिक छत्र और देव विग्रहों के साथ चलते हुए भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं। ढोल नगाड़ों मोहरी और अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्रों की ध्वनि माहौल को और भी भक्तिमय बना देती है। ये ऐतिहासिक मेले और मड़ई जनजातीय संस्कृति परंपराओं और धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से विकल्प शुक्ला।
Nestled in the Landimal Reserve Forest with the Rairakol Forest Division of the Sambalpur District, Bhima Mandali is a site steeped in mystery and history. Featuring ancient natural caves adorned with rock paintings and inscriptions, this remote locale provides a glimpse into Odisha's prehistoric past.
Bhima Mandali, an ancient site in the Sambalpur district, has recently attracted significant attention for its rich historical and archaeological significance. Situated 100 km from the district headquarters, the Bhima Mandali site boasts over 600 rock shelters, with historians accessing 100 that contains inscription and painting. According to Professor Sadashiva Pradhan, who has conducted an intensive study of the site, the Bhima Mandali inscription and engraving date from the Mesolithic period to the late Chalcolithic period, as stated by the district tourism office. Within the entire reserve forest, there are 69 images depicting triangle, feet, couple, honeycomb and crisscross pattern located in the Usakoti 1 area, while an additional 67 such paintings can also be found there. These work of art from prehistoric human sets significant light on the history of early peoples and must be preserved, protected, projected and popularized, said Rabindra Kumar Dalai, assistant director, Sambalpur tourism office. He said, once Bhima Mandali is designated as a tourist spot, appropriate planning and budget allocation will be made for its development.
After declaration as a tourist destination, there will be government provision or budget provision for the development of that particular tourist destination.
Last month, the Odisha government declared Bhima Mandali a tourist destination. Following this, on February 25th, a team from the district administration led by the Union Minister for Education and the local MP visited the site and inaugurated a new tourism circuit entitled Trek to Bhima Mandali. For Parikrama, Vismita प्रधान, आकाशवाणी संबलपुर।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
In cricket, New Zealand were 149 for 4 in 34.2 overs against India in the summit clash of the ICC Champions Trophy 2025 when reports last came in. Now we go live to our correspondent for a detailed assessment. Manik, how is the match poised? And who is ahead so far?
Reshma, the match is living up to expectations as the ultimate showdown, with India holding a slight advantage backed by their supporters. Earlier, the Black Caps got off to a flying start after winning the toss, reaching 50 runs in just 7 overs. However, Indian spinners brought India right back into the game by taking wickets at regular intervals. Varun Chakravarti dismissed Will Young, who was given out LBW. Later, Kuldeep Yadav struck immediately, taking the crucial wicket of Rachin Ravindra, the tournament's double centurion, with a googly on the very first ball of his spell. He then backed it up, dismissing former New Zealand skipper Kane Williamson, who was caught and bowled. Ravindra Jadeja joined the party, trapping Tom Latham LBW. Reshma, the pitch is playing on the slower side, with the ball gripping firmly and stopping, making it difficult for batters to hit across the line with ease. India will be pleased with their decision to field four spinners in the spin-assisting conditions. The pitch is nothing like the one in Lahore, which was batter's paradise, producing over 600 runs in that game. I think the men in blue will be aiming to restrict the Black Caps to below 220 to maintain a firm grip in the match, while New Zealand will be hoping to post anything above 250, Reshma, to make it competitive. Back to you, Reshma.
Thank you, Mari. And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter and social reformer Jhaver Chand Kalidas Meghani, who died on 9th March 1947, referred to as Rashtriya Shayar or Poet of the People by Mahatma Gandhi. Meghani was also praised by Sardar Vallabhbhai Patel, who used to say that his was a voice full of courage.
Meghani, who called himself Pahadnu Balak, the son of the mountains, was born on August 29th, 1896, on the outskirts of a town called Chotila, in what was then known as the Kathiawar Agency. A pioneering folklorist, Jhaver Chand used Gujarati folklores to rouse the masses against the might of the British Empire while also silently saving the dying voices of the country's folk traditions.
He wrote Sindhu Dho, a collection of 15 patriotic songs in 1930, which commemorated the Salt and Dholera Satyagrahas. The British government banned the book and confiscated all existing copies. However, the revolutionary spirit of the people ensured that his voice was not suppressed, and the copies of the book were circulated underground. The British summoned Meghani to a special court on April 28, 1930, implicating him with false charges. He was sentenced to 2 years' imprisonment in Sabarmati jail, but was released in a year after the Gandhi-Irwin Pact.
On the eve of his journey to England for the second roundtable conference, Gandhiji was enveloped in gloom as he knew that the British were unlikely to accept his demand for complete independence. Meghani hurriedly wrote a poem for him titled Chelu Katoru, The Last Cup of Poison, in which he requested Bapu to drink this last cup of poison for the nation. The poem was composed in the final hour and rushed to Gandhiji just before his departure. On reading it, Gandhiji immediately said, "Meghani seems to have entered my soul and fully captured my state of mind in this poem." It was then that he spontaneously gave him the title of Rashtriya Shayar.
The revolutionary poet was constantly engaged with the freedom struggle. However, he was also increasingly perturbed by the rising communal violence across the country. And it was perhaps this distress that caused a heart attack to claim his life on March 9, 1947. Salutes the great nationalist.
We also remember nationalist Baiswara Gopal Reddy, who died on the 9th of March 1997. Born in Buchireddy Palam village of Nellore district in 1907, Reddy gave up his school education to participate in the freedom struggle. Later, he completed his studies at the Shantiniketan University. It was during this time that he took a liking for Tagore's works and translated many of his books into Telugu. He came to be popularly known as Andhra Tagore.
Reddy took part in non-cooperation movement, the Salt Satyagraha, and the Quit India movement. He was also imprisoned in Vellore and Tanjavur jails in the early 30s. Reddy was elected to the Composite Madras Assembly in February 1937 and held the important portfolios of local administration and finance.
After independence, Reddy became the chief minister of Andhra in 1955 till Andhra Pradesh was formed in November 1956. Reddy became the information and broadcasting minister in the central cabinet from 1958 to 1963. He was also elected to Lok Sabha twice and served as the governor of Uttar Pradesh. We salute the great nationalist.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्म दिवस.
Yes, today we remember Joy Mukherjee, actor and director referred to as the heartthrob of the 1960s and 70s. Joy Mukherjee was the son of Shashidhar Mukherjee and Sati Devi. He gained popularity with his very first screen appearance opposite Sadhana in the film Love in Shimla in 1960, directed by R.K. Nair. He then starred with Asha Parekh for several hits like Phir Wahi Dil Laya Hoon, Love in Tokyo, Ziddi and Hum Hindustani. Some of his films like Aao Pyar Kare and Shagird, Ek Musafir Ek Haseena, Ishara and Ji Chahta Hai were super hit movies. And most of his movies had hit music and beautiful songs like these.
Banda Parvar थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा बहुत शुक्रिया
और आज पुण्यतिथि है सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक निर्माता और पटकथा लेखक के आसिफ की 1960 में बने मुगले आजम के लिए उन्हें विशेष रूप से ख्याति मिली उत्तर प्रदेश के इटावा में पैदा हुए के आसिफ महज 8वीं जमात तक पढ़े थे पैदाइश से जवानी तक का वक्त गरीबी में गुजरा लेकिन किस्मत के सितारों और कला की प्रतिभा ने उन्हें हिंदी सिनेमा में उस जग तक पहुंचा दिया जो शिखर है उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी भव्य और सफल फिल्म का निर्माण किया ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनकी फिल्म के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा उनका पूरा नाम है करीमुद्दीन आसिफ
मौत मोहब्बत से करीब हो गई ऐसा ही होगा
अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे
प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया कोई चोरी नहीं की प्यार किया
And now let's recall Ganesh Prasad. He was a mathematician who specialized in the theory of potentials, theory of functions of a real variable, Fourier series and the theory of surfaces. He was trained at the universities of Cambridge and Göttingen and on return to India, he helped develop the culture of mathematical research in India. The mathematical community of India considers Ganesh Prasad as the father of mathematical research in India.
Jee. आज पुण्यतिथि है मशहूर अभिनेता सतीश कौशिक की वे निर्माता निर्देशक कॉमेडियन और पटकथा लेखक भी थे हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जन्मे सतीश कौशिक अपनी सफलता की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहे बॉलीवुड के करियर शुरू करने से पहले सतीश कौशिक ने रंगमंच में भी काम किया उनके अभिनय का हर कोई दीवाना था
बुल्लू रंगीला बेजर भाई
वो टपकाने का है उसको साथ में लाया है क्या
नहीं बेजर भाई मैं उसकी फोटो लेकर
अरे यार साथ में लाता तो इसको यहीं सुरा डालता ना पप्पू बेजर के आवन जावन का टाइम बच जाता बेगा
कितने का फाड़ू
क्या
चेक
टमाटर के आखिरी दाने अरे पप्पू बेजर के यहाँ चेक बैक का लफड़ा नहीं चलता समझा क्या कैश चाहिए हार्ड कैश ये स्टोरी सुनाना बंद कर और जल्दी से रोकड़ा निकाल समझा क्या और अपने हीरो हीरा लाल को पतली गली से लेके दुड़की हो जा जा
एंड लेट्स टॉक अबाउट द बर्थडे नाउ इट्स उस्ताद जाकिर हुसैन बर्थडे द लेजेंडरी तबला मेस्ट्रो बोर्न ऑन मार्च 1951 in Mumbai. Son of the accomplished tabla player Ustad Allah Rakha, Zakir's musical journey began remarkably early at just 7 years of age when he performed for the first time when he was born. His father famously recited tabla rhythms into his newborn son's ears instead of traditional prayers, declaring, "These are my prayers," setting the foundation for an extraordinary musical legacy.
आज जयंती है भारतीय कवि और हिंदी फिल्मों के गीतकार ओम प्रकाश भंडारी की उनका जन्म 9 मार्च 1917 में हुआ था उन्हें कमर जलालाबादी के नाम से बेहतर जाना जाता है एक गीतकार के रूप में कमर जलालाबादी बहुमुखी कलाकार थे एक तरफ उन्होंने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी द्वारा गाए सूर्य मेरी सावनारी मुझको कहीं तुम ना भूल जाना आदि जैसे हास्य गीत भी कई लिखे फिल्म हावड़ा ब्रिज ने अब उनके कैरियर को गीतकार के रूप में अप्रत्याशित ऊंचाई दी
गुनी जनो भक्त जनो हरि नाम से नाता रे जोड़ो भाई माया से मुंह मोड़ो रे जगत नारायण की जय जय बोलो बोलो
और श्रोताओं क्रिकेट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच जारी है और अगर आप भी क्रिकेट पसंद करते हैं तो आप क्रिकेट अवश्य देखें। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार
नमस्कार।